यह गली अपने आप में निराली है, इसमें बने सभी मकान एक जैसे नहीं, इन मकानों में रहने वाले प्राणी भी भिन्न भिन्न प्रकृति व प्रवृत्ति के हैं। मकान कच्चे भी हैं, पक्के भी, लकड़ी की दीवारों वाले भी हैं, ईंटों वाले भी, मिट्टी से चिने हुए भी हैं और सीमेंट से बने भी, पक्की छत वाले भी हैं, कच्ची छतों वाले भी। कभी यह गली गली नहीं थी, ऐसी भीड़ यहां नहीं थी, दो चार मकान थे, एकदम खुली जगह थी। साधुराम का घर था, मुंशी का घर था और कुछ दूरी पर कुम्हार का, बस 100 गज दूर तक और कोई मकान नहीं था। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ यहां और लोग भी आकर बसते गए, कोई किसी को रोक ना सका और इसके फलस्वरूप बरसों पहले जो खुली हवादार जगह थी अब एक गली बन गई है, घुटन भरी, अंधेरी। ऐसी गली जहां कई संसार बसे हैं, सभी के अपने अपने छोटे छोटे, इसीलिए यहां अभी तक प्रकाश नहीं आ पाया। यहां कुम्हार भी रहता है, लोहार भी, धोबी भी रहता है, सरकारी मुंशी भी, स्कूल का मास्टर और साधुराम जैसा दुकानदार भी। सभी की अपनी अपनी दुनिया है, सभी उसी में मस्त हैं। धोबी दिन रात कपड़ों की धुलाई सफाई में मस्त रहता है, लच्छन लोहार लोहा कूटने में, कुम्हार अपनी चाक के पास बैठा मिट्टी के बर्तन बनाता रहता है, मुंशी जी को अपने परिवार का विस्तार करने में, मास्टर जी को ट्यूशने रखने में और साधुराम शांति को अपने कल्पना लोक में विचरते रहने में आनंद आता है। इसीलिए कोई किसी की था लेना पसंद नहीं करता और शायद इसीलिए लच्छन यहां टिक कर नहीं रह पाया, वह उदास यहां आया था, आज और भी उदास हुआ, यहां से जाने को उद्यत है। अपना थोड़ा सा जो भी उसका सामान था वह बांध कर चल पड़ा है, कहीं और जाने के लिए उसने इस गली से विदा ले ली है। गली से निकलकर वह खुले में आ गया, सामने से साधुराम आ रहा था। लच्छन उसे देखकर ठिठक कर रुक गया, साधुराम की ओर देखने लगा। साधुराम के साथ एक नवयुवक भी था, वह मोहन था। लच्छन रुका रहा, साधुराम उसके निकट आया। लच्छन के कंधे पर लदा सामान देखकर वह चौंका, लच्छन ये क्या? बस बाबा अलविदा, साथ ही लच्छन ने हाथ जोड़ दिए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। साधुराम ने लच्छन के उदास चेहरे पर अपनी उत्सुक दृष्टि डाली। मैं जा रहा हूं बाबा, लच्छन का स्वर उदास था। कहां? साधुराम ने पूछा। दूर कहीं और। भला क्यों? मेरे पैर मचल रहे हैं, मेरा मन छटपटा रहा है, लच्छन ने कहा। क्यों, क्या हुआ? साधुराम को लच्छन का चले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। गली में अब एक लच्छन ही तो था जिसे नित्य सुबह शाम साधुराम राम राम किया करता था। होना क्या था बाबा, अपना मन ही नहीं लगा इस गली में, जैसी घुटन भरी अंधेरी यह स्वयं है वैसा ही इसके निवासियों का जीवन है। मैं खाना बादोश ही भला, बुरा ना मानना बाबा, यहां सभी अपने में ही मस्त हैं, कोई किसी की थाह नहीं लेता, अपनी खुशी सभी अपने में समेटे हैं, अपने दुख सभी अपने मन में छिपाए हैं, सभी एक दूसरे के निकट रहते हुए भी कोसों दूर हैं। गली के घुटन भरे वातावरण में मेरा दम नहीं घुटा, लेकिन यहां घुट घुट कर जीती घुट घुट कर मरती जिंदगियां निरंतर मेरा दम घोंटती रही। अपने को ही लो तुम, तुमने अपने गम क्या अपने पास ही छिपाकर नहीं रखे? मैं अक्सर तुम्हारे घर से निकलती सिसकियों को सुनता रहा हूं, अम्मा रोती है, उसे जो दुख है मैं समझता हूँ। मैं भी किसी का बाप था, मेरी पत्नी भी किसी की माँ थी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन मेरे समूह जैसी एकता यहाँ नहीं। यहाँ एक चलता है, दूसरा रुक जाता है, एक काम करता है, दूसरा सोया रहता है, एक हंसता है, दूसरा रोता है। कोई ऐसा नहीं जो दूसरों को हंसता देखकर हंसे, रोता देखकर हम दर्द बने, मेहनत करता देखकर हाथ बटाए। बाबा तुम भी नहीं, तुमने मेरा सब कुछ जान लिया, लेकिन अपना सब कुछ मुझसे छिपाए रखा। मैंने देखा तुमसे कोई पूछता भी नहीं। लच्छन साधुराम की आंखें भर आई और मोहन हतप्रभ कभी साधुराम को देखता, कभी लच्छन को। लच्छन को जिसका जीवन उनके सभी के, मोहन के भी साधुराम के भी जीवन से कितना भिन्न था। कहीं लोभ नहीं, कहीं मोह नहीं, कितना सुखी, कितना सरल। अच्छा बाबा, तभी लच्छन ने मोहन को देखा और पूछा, ये कौन है बाबा? यह मोहन है, इसे मैं अब अपने पास रखूंगा। साधुराम ने मोहन के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, कहां से आया है? लच्छन ने पूछा, ऐसी ही एक तंग गली से। जरूर रखो, जरूर रखो, अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। लच्छन ने पुनः हाथ जोड़ दिए, राम राम, कभी आए तो मिलना। आया तो जरूर मिलूंगा, और लच्छन आगे बढ़ गया। कुछ क्षण तक साधुराम दृष्टि फेर दूर जा रहे लच्छन को देखता रहा, फिर मोहन को लिए गली में प्रवेश कर गया। तब मोहन ने पूछा, बाबा ये कौन था? मोहन के प्रश्न का उत्तर साधुराम ने उसी क्षण नहीं दिया, वह चलता रहा, एकाएक रुक गया लच्छन की झोपड़ी के पास। अन्य दिनों की भांति आज न पट्टी थी, ना ही कोई चिंगारी, थोड़ी सी राख पड़ी थी लच्छन की स्मृति दिलाने के लिए, शेष वहां कुछ नहीं था। झुग्गी की ओर संकेत करके साधुराम ने कहा, एक महीना हुआ यहां आकर रहने लगा था, अब चला भी गया। ओह, मोहन इतना ही कहकर चुप हो गया। प्रतीक्षा के क्षण समाप्त हुए, बाहर का दरवाजा खुला, साधुराम ने भीतर प्रवेश किया, फिर मुड़कर बाहर खड़े मोहन से कहा, आओ आ जाओ। वह झिझका, लेकिन अगले ही क्षण भीतर आ गया। शांति बरामदे में बैठी थी, उन्हें देखकर उठ खड़ी हुई, बोली, आ गए? हाँ, मोहन भी आ गया। मोहन की ओर देखते हुए साधुराम ने कहा, मोहन अपनी दृष्टि नीचे झुकाए खड़ा था। शांति आगे बढ़ी, उसके समीप चली आई, उसे ऊपर से नीचे तक यूं देखा जैसे परख रही हो, फिर बोली, हमारे साथ रहोगे? मोहन भला क्या कहता, वह तो आया ही इसीलिए था। उसने दृष्टि उठाकर शांति के मुख की ओर देखा, रह लोगे ना? शांति ने बात दूसरे ढंग से कही। मोहन ने तब भी कुछ ना कहा। अच्छा ठीक है, शांति ने उसकी चुप्पी उसकी स्वीकृति समझी, फिर उसकी बांह पकड़कर खाट पर बिठा दिया, फिर कहने लगी, देखो मेरी ओर देखो जरा। मोहन ने झिझकते हुए उसकी ओर देखा, तब बोली, मेरी आंखों में देखो, इनमें मां की व्याकुल ममता मंडरा रही है, यही व्याकुलता मिटाने के लिए मैंने तुम्हें इस घर में रखने का निश्चय किया है। स्वार्थ मेरा है, लेकिन तुम इससे अपना निर्वाह भी कर सकते हो। मैं पुत्र प्रेम की भूखी हूँ, और यह भूख तभी मिट पाएगी जब तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझोगे। तुम्हारा विगत कैसा रहा, तुम कैसे रहे, क्या कुछ तुमने किया, उसे यदि भूल गए तो तुम्हारे लिए आने वाले क्षण आनंदमयी होंगे। भूलने से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि तुम कहने लगो कि वे दिन मेरे थे ही नहीं, वे दिन तुम्हारे थे और उन्होंने तुमसे तुम्हारे सुखद क्षण छीने, इसलिए वैसे दिन तुम फिर अपने पास नहीं फटकने दोगे, अपने क्षणों को व्यर्थ न जाने दोगे। तुमने बहुत क्षण यूं ही बिखेर दिए, उनसे मगर यही सीख ले लो कि केवल क्षणों को बिखेरना ही नहीं चाहिए, अपितु उनका इस भांति सदुपयोग करना चाहिए कि वे उज्जवल भविष्य के लिए काम आ सके। समझे मेरी बात? कुछ क्षण रुककर शांति पुनः कहने लगी, प्यार तभी मिलता है, आदर तभी मिलता है जब हम स्वयं वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। तुम यदि किसी को तंग करोगे, तुम यदि किसी को गाली निकालोगे, कोई भी इस दुर्व्यवहार को नहीं सह पाएगा। यह करयुग है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यार चाहते हो तो प्यार दो, आदर चाहते हो तो आदर दो। अपने सुख की चाह में दूसरों के दुख के साथी बनो। कोई तुमसे घृणा करता है, उसकी घृणा को प्यार में बदलने के लिए तुम्हें अपनी घृणा को त्यागना होगा। शांति चुप हो गई, मोहन के चेहरे को निहारने लगी। वह शायद उसकी बात पर विचार कर रहा था। तब पूछा, समझे कुछ? जी समझा, उसने धीरे से कहा। शांति ने तब साधुराम के आमुख होकर कहा, जानते हो अगले मंगल को दिवाली है, शुभ घड़ी, मोहन हमारे घर आया है, हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। यह खुशी ही तो है हमारी सबसे बड़ी खुशी, इसी बहाने इस घर की उदासी मिट जाएगी। भगवान ने चाहा तो फिर कभी हमारे आंगन में उदासी नहीं फटकेगी। तभी उसे कुछ स्मरण आया, और हां सुबह ही लच्छन को न्योता दे देना दिवाली का। लच्छन को? साधुराम को आश्चर्य हुआ। हां उसे भी अपना साथी बना लेंगे, आपने ही तो मुझे बताया था कि वह अकेला है, नितांत अकेला, उसका अकेलापन हमें ही तो दूर करना चाहिए, जैसे हमारा अकेलापन यह मोहन दूर करेगा। शांति के शब्दों में उल्लास था। साधुराम एकाएक उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया, बोला, शांति लच्छन को बुलाना चाहती हो तो समझो दिवाली देर से आई, कुछ दिन पहले आ गई होती। क्या मतलब? शांति चौंकी। हां लच्छन चला गया इस गली से, साधुराम का स्वर भर्रा आया, कहां शाम को तो यहीं था, मैं मंदिर गई थी। उसे घोर आश्चर्य की अनुभूति हुई, लेकिन उदास सा बैठा था, भट्टी भी नहीं जल रही थी। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? पर उसे कहां गया वह? कहीं और, यहां से दूर, यहां रह नहीं सका, उसका दम घुटता था इस गली में। दम घुटता? लेकिन हमें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हमारा नहीं घुटता इसलिए कि हम यादों से लिपटे वर्तमान से दूर रहते हैं, इसलिए कि हम इसके आदि बन चुके हैं, और वह लच्छन अपना आज हंसकर बिताना चाहता था, आनंदमयी, यहां कोई उसे ऐसा नहीं मिला, इसीलिए चला गया। ओह, मैंने आनंदमयी ही तो बनाना चाहा था वर्तमान अपना, उसका, आपका, हम सबका, लेकिन खैर अभी हम तो हैं। यह कहकर शांति रसोई घर की ओर बढ़ गई। साधुराम उदास था, मोहन कुछ सोच रहा था, सभी सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद अभी दूर थी। नए वातावरण का अभ्यस्त ना होने के कारण वह पल प्रतिपल बेचैनी से करवटें बदल रहा था। ऐसी दशा में उसका मस्तिष्क भी विचारामग्न था। रह रहकर शांति के शब्द उसे सुनाई पड़ रहे थे, जिन्हें ध्यान में लाकर वह गंभीर और गंभीर होता जा रहा था। अम्मा कह रही थी, शायद ठीक ही कह रही थी, प्यार मिलता है प्यार देने पर, दुर्व्यवहार करे तो गाली निकालता है हर कोई, तो ही घृणा करता है कोई। यहां प्यार मिलेगा तभी जब तक मैं इनकी भावनाओं की था लिए रहूंगा, मुझे इन्हें खुश रखना होगा, तभी ये मुझे अपने पुत्र की भांति समझेंगे। उसने करवट बदली, उसे अपना सिर भारी होता जा रहा प्रतीत हो रहा था। विचारों को बिखेरने के लिए उसने अपना सिर झटकाया, लेकिन व्यर्थ वह सोचे जा रहा था। यहां मगर चुप्पी कितनी है, नीरसता नीरवता कितनी मंद गति से चलता है जीवन। यहां प्यार मिलेगा लेकिन यहां उदासी है, कितनी चुप्पी, शोर से कोसों दूर, इतनी शांति भयावह नहीं क्या? अपनी सब इच्छाएं दबानी होंगी मुझे, कहीं सब कुछ चौपट ही ना हो जाए मेरा। यहां रूखी सूखी है मगर इस शांति को कैसे सहन करूंगा? ये बोझिल क्षण, ये चुप्पी मेरे जीवन में जो आज तक नहीं आई, एकाएक इतना चुप, कहीं पागल ना हो जाऊं, शायद ही यहां टिक सकूं। हां भला कैसे इनके बुढ़ापे में अपने जीवन को मिला दूं? मेरा शोर तो जवान है, उमंगों भरी मेरी हर सांस है, मैं खुशी में नाचता हूं, लेकिन ये चुप बैठकर जीवन दर्शन की बातें करेंगे, अपने बीते दिनों को याद करेंगे। इनकी उमंग है दबी दबी, उत्साह नहीं आगे के लिए। यहां बात में बात निकलेगी और ये पीछे की ओर चले जाएंगे, अपनी बातें मुझे सुनाएंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन मेरा शोर कौन सुनेगा? मेरी उमंगें ठंडी पड़ जाएंगी। लगता है मैंने यहां आकर गलती की है, बुढ़ापे और उमड़ती जवानी के अंतर की खाई को पाटना आसान नहीं। इसके लिए या तो मुझे बूढ़ा बनना होगा या इन्हें जवान। मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा किसी भी दशा में, मुझे घुट घुट कर नहीं मरना, मुझमें सन्यासी बनने की ललक नहीं। मैं अपनी उत्तेजना को संयम के बल पर शांत नहीं करना चाहता, मैं बहुत ऊंचे उठकर देखना चाहता हूं कल्पना में इस सृष्टि का मूल। उसने फिर करवट बदली, बाबा कह रहा था ईमानदारी की रोटी खाऊं, लेकिन यह क्या ईमानदारी है कि मैं अपनी सभी उमंगों को नष्ट कर दूं, कि मैं अपनी उफनती जवानी में इस बाबा बुढ़िया की शांति का नीर डालकर इसे एकदम ठंडा कर दूं? क्या उफान में आनंद नहीं, मजदूरी करूं लेकिन शोर में रहूं? बाप फेरी लगाता है, मैं भी फेरी लगा लूं, लेकिन बाबा की बस्ती के ठंडे शोर से हटकर अपने गर्म शोर के समीप रहूं? अरे हां, मैं क्यों ना अपने बाप अपनी मां की घृणा को प्यार में बदलने का प्रयत्न करूं, आखिर वह मेरे मां बाप है, बाबा बुढ़िया से मेरा क्या नाता? हां मुझे इनकी बस्ती से दूर जाना होगा, नहीं तो एक दिन मैं भी इन्हीं की तरह इनकी उमंगें समय पर नहीं उठ पाई, इसलिए अम्मा को अपनी उमंगें जवान दिखती हैं, उनका समुद्र उमड़ता दिखाई देता है, जबकि वे सब निरुत्साहित होकर कब की मर चुकी, अब केवल अतृप्ति है ना मिट सकने वाली, और प्रयत्न कर रहे हैं उसे बुझाने का मुझे अपने पास रखकर, मुझसे अपनी उमंगों की प्यास बुझाना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी उफनती उमंगों के प्रवाह को इनकी ओर मोड़ दूं, अतृप्त हो जाऊं और मेरा बुढ़ापा भी इन जैसा अतृप्त हो, मुझे भी किसी जवान खून की जरूरत पड़े। नहीं नहीं, मुझसे इनकी अतृप्ति मिटेगी नहीं, बढ़ेगी। इन्हें चाहिए कि कोई और साधन खोजे अपनी बूढ़ी उमंगों को संतुष्ट करने का, भगवान को बस याद करें। हां अब मैं सुबह होते ही, अरे सुबह की इंतजार क्यों, अभी चल देता हूँ। वापिस मुझे अपने शोर में खोकर जीवन की नई राह को तलाशना है। बेशक मंगू ना हो, छन्नो ना हो, शराब ना हो, लेकिन मेरे घर का शोर हो, घृणा दूर हो जाए, अनादर दूर हो जाए, फिर क्या चाहिए, और कुछ नहीं। और वह उठ खड़ा हुआ झट से, चुपचाप दरवाजा खोलकर चला गया। कोई जागा नहीं, न साधुराम न शांति। हवा का एक झोंका आया था जो वातावरण को क्षण भर के लिए शीतल बनाकर पुनः अपनी सृष्टि में लीन हो गया। दोनों सुबह उठे, उठते ही चौंक पड़े। मोहन अपने बिस्तर पर नहीं था। कहां गया, शांति ने पूछा। क्या कहूं, साधुराम को समझ नहीं आया। चला गया, शायद चला ही गया, मगर क्यों। हमारा भाग्य, भाग्य, हाँ भाग्य, शायद किसी सहारे का होना नहीं लिखा। दुर्भाग्यशाली हैं हम, कोई मीत नहीं बन सकता हमारा, बेशक हम कितना प्रयत्न करें, शांति ने आर्द्र स्वर में कहा। सतीश होता तो क्या था, लेकिन होता तो ना, हम ईश्वर की अभिशप्त कृतियां हैं। शांति रोने लगी, घर का वातावरण उन्हें भुजिल हो गया।